संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने अपने परम धाम का वर्णन करते हुए यह बताया कि उसको प्राप्त होकर जीव लौटकर संसार में नहीं आते। उसके विवेचन के रूप में अपने अंश जीवात्मा को भी अपने से अभिन्न बताते हुए जीव से क्या भूल हो रही है कि जिससे उसको नित्य प्राप्त परमात्म स्वरूप परम धाम का अनुभव नहीं हो रहा है। इसका हेतु सहित वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है, अपना मान लेता है। व्याख्या ममैवांसो जीवलोके जीवभूत है सनातन है। जिनके साथ जीव की तात्विक अथवा स्वरूप की एकता नहीं है, ऐसे प्रकृति और प्रकृति के कार्य मात्र का नाम लोक है। तीन लोक 14 भवन में जीव जितनी योनियों में शरीर धारण करता है, उन संपूर्ण लोकों तथा योनियों को जीव लोक के पद के अंतर्गत समझना चाहिए। यह आत्मा परमात्मा का ही अंश है, परंतु प्रकृति के कार्य शरीर इंद्रिया मन प्राण आदि के साथ अपनी एकता मानकर वह जीव हो गया है, जीव भूत है। उसका ये जीवपना बनावटी है, स्वाभाविक नहीं है। नाटक में कोई पात्र बनने की तरह ही ये आत्मा जीवलोक में जीव बनता है। सातवें अध्याय के पांचवें श्लोक में भगवान ने कहा है कि संपूर्ण जगत को मेरी जीव भूता परा प्रकृति ने धारण कर रखा है। अपरा प्रकृति से वास्तविक संबंध न होने पर भी जीव ने उससे अपना संबंध मान रखा है। भगवान जीव के प्रति कितनी आत्मीयता रखते हैं कि उसको अपना ही मानते हैं, ममैवांस है। मानते ही नहीं प्रत्युत जानते भी हैं। उनकी यह आत्मीयता महान हितकारी अखंड रहने वाली और स्वतः सिद्ध है। यहां भगवान यह वास्तविकता प्रकट करते हैं कि जीव केवल मेरा ही अंश है, इसमें प्रकृति का किंचिन मात्र भी अंश नहीं है। जैसे सिंह का बच्चा भेड़ों में मिलकर अपने को भेड़ मान ले, ऐसे ही जीव शरीर आदि जड़ पदार्थों के साथ मिलकर अपने असली चेतन स्वरूप को भूल जाता है। अतः इस भूल को मिटाकर उसे अपने को सर्वदा सर्वथा चेतन स्वरूप ही अनुभव करना चाहिए। सिंह का बच्चा भेड़ों के साथ मिलकर भी भेड़ नहीं हो जाता। जैसे कोई दूसरा सिंह आकर उसे बोध करा दे कि देख, तेरी और मेरी आकृति स्वभाव जाति गर्जना आदि सब एक समान है, अतः निश्चित रूप से तू भेड़ नहीं है, प्रत्युत मेरे जैसा ही सिंह है। ऐसे ही भगवान यहां मम एव पदों से जीव को बोध कराते हैं, हे जीव तू मेरा ही अंश है, इस प्रकृति के साथ तेरा संबंध कभी हुआ ही नहीं है, भी नहीं और होगा भी नहीं और हो सकता भी नहीं। भगवत प्राप्ति के सभी साधनों में अहंता और ममता का परिवर्तन रूप साधन बहुत सुगम और श्रेष्ठ है। अहंता और ममता दोनों में साधक की जैसी मान्यता होती है उसी के अनुसार उसका भाव तथा क्रिया भी स्वतः होती है। साधक की अहंता यह होनी चाहिए कि मैं भगवान का ही हूँ और ममता यह होनी चाहिए कि भगवान ही मेरे हैं। यह सभी का अनुभव है कि हम अपने को जिस वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि का मानते हैं उसी के अनुसार हमारा जीवन बनता है, पर यह मान्यता केवल कर्तव्य पालन के लिए है क्योंकि ये सदा रहने वाली नहीं है। परंतु मैं भगवान का हूँ यह वास्तविकता सदा रहने वाली है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साधु हूँ आदि भाव कभी हमसे ऐसा नहीं कहते कि तुम ब्राह्मण हो कि तुम साधु हो। इसी प्रकार मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, धन, जमीन, मकान आदि जिन पदार्थों को हम भूल से अपना मान रहे हैं वे हमें कभी भी ऐसा नहीं कहते कि तुम हमारे हो। परंतु संपूर्ण सृष्टि के रचयिता परमात्मा स्पष्ट घोषणा करते हैं कि ये जीव मेरा ही है। विचार करना चाहिए कि शरीर आदि पदार्थों को हम अपने साथ लाए नहीं, इच्छा अनुसार उनमें परिवर्तन कर सकते नहीं, इच्छा अनुसार उनको अपने पास स्थिर रख सकते नहीं, हम भी उनके साथ सदा रह सकते नहीं, उनको अपने साथ ले जा सकते नहीं, फिर भी उनको अपना मानते हैं। ये हमारी कितनी बड़ी भारी भूल है। बचपन में हमारे मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर जैसे थे वैसे अब नहीं है, सब के सब बदल गए। फिर भी हम जो बचपन में था वही अब हूं ऐसा मानते हैं। कारण कि शरीर आदि में परिवर्तन होने पर भी हमारे में परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार शरीर आदि में हमें स्पष्ट परिवर्तन दिखता है। जिसको परिवर्तन दिखता है वह स्वयं परिवर्तन रहित होता ही है। अतः संसार के पदार्थ, व्यक्ति हमारे साथी नहीं है। मैं भगवान का हूं ऐसा भाव रखना अपने आप को भगवान में लगाना है। साधकों से भूल यही होती है कि वे अपने आप को भगवान में न लगाकर मन बुद्धि को भगवान में लगाने की कोशिश करते हैं। मैं भगवान का हूँ इस वास्तविकता को भूलकर मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साधु हूँ आदि भी मानते रहे और मन बुद्धि को भी भगवान में लगाते रहे तो यह दुविधा कभी नहीं मिटेगी। और बहुत प्रयत्न करने पर भी मन बुद्धि जैसे भगवान में लगने चाहिए वैसे लगेंगे भी नहीं। भगवान ने भी इस अध्याय के चौथे श्लोक में उस परमात्मा की शरण हूँ पदों से अपने आप को परमात्मा में लगाने की बात ही कही है। वो स्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि पहले भगवान का होकर फिर नाम जप आदि साधन करें तो अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई स्थिति आज अभी सुधर सकती है। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो ही राम को नाम जपो तुलसी तजी कुसमाज। तात्पर्य यह है कि भगवान में केवल मन बुद्धि लगाने की अपेक्षा अपने आप को भगवान में लगाना श्रेष्ठ है। अपने आप को भगवान में लगाने से मन बुद्धि स्वतः सुगमता पूर्वक भगवान में लग जाते हैं। नाटक का पात्र हजारों दर्शकों के सामने ये कहता है कि मैं रावण का बेटा मेघनाद हूं और मेघनाद की तरह ही वह बाहरी सब क्रिया करता है, परंतु उसके भीतर ये भाव हरदम रहता है कि यह तो स्वांग मात्र है, वास्तव में मैं मेघनाद नहीं हूं। इसी तरह साधकों को भी नाटक के स्वांग की तरह इस संसार रूपी नाट्यशाला में अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भीतर से मैं तो भगवान का हूँ ऐसा भाव हरदम जागृत रखना चाहिए। जीव सदा से ही भगवान का है, सनातन है। भगवान ने न तो कभी जीव का त्यागी किया है, न कभी उससे विमुखी हुए हैं। जीव भी भगवान का त्याग कर सकता नहीं। भगवान के द्वारा मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके वह भगवान से विमुखी हुआ है। जिस प्रकार सोने का गहना तत्वतः सोने से अलग नहीं हो सकता, उसी प्रकार जीव भी तत्वतः परमात्मा से कभी अलग नहीं हो सकता। बुद्धिमान कहलाने वाले मनुष्य की यह बहुत बड़ी भूल है कि वह अपने अंशी परमात्मा से विमुख हो रहा है। वह इधर ख्याल ही नहीं करता कि भगवान इतने सुहृद है कि हमारे न चाहने पर भी हमें चाहते हैं, न जानने पर भी हमें जानते हैं। वे कितने उदार, दयालु और प्रेमी हैं, इसका वर्णन भाषा, भाव, बुद्धि आदि के द्वारा हो ही नहीं सकता। ऐसे सुहृद भगवान को छोड़कर अन्य नाशवान जड़ पदार्थों को अपना मानना बुद्धिमानी नहीं बल्कि महान मूर्खता है। जब मनुष्य भगवान के आज्ञा के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करता है तब वे इसकी इतनी उन्नति कर देते हैं कि जीवन सफल हो जाता है और जन्म मरण रूप बंधन सदा के लिए मिट जाता है। जब मनुष्य भूल से कोई भी निषिद्ध आचरण कर बैठता है तब वे दुखों को भेजकर उसको चेताते हैं, पुराने पापों को भुगताकर उसको शुद्ध करते हैं और नए पापों में प्रवृत्त होने से रोकते हैं। जीव कहीं भी क्यों न हो, को में भी क्यों न हो, अथवा स्वर्ग में, मनुष्य योनि में हो, अथवा पशु योनि में हो, भगवान उसको अपना ही अंश मानते हैं। यह उनकी कितनी अहेतु की कृपा, उदारता और महत्ता है। जीव के पतन को देखकर भगवान दुखी होकर कहते हैं कि मेरे पास आने का उसको पूरा अधिकार था, पर वह मुझे प्राप्त किए बिना ही नरकों में जा रहा है। माम अप्राप्य वो कौनते है ततो यान्त धमांगतिम, 16:20। मनुष्य चाहे किसी भी स्थिति में क्यों न हो, भगवान वहां उसे स्थिर नहीं रहने देते, उसे अपनी ओर खींचते ही रहते हैं। जब हमारी सामान्य स्थिति में कुछ भी परिवर्तन हो, चाहे सुख आए, दुख आए, आदर हो, निरादर हो, तब ये मानना चाहिए कि भगवान हमें विशेष रूप से याद करके नई परिस्थिति पैदा कर रहे हैं, हमें अपनी ओर खींच रहे हैं। ऐसा मानकर साधक प्रत्येक परिस्थिति में विशेष भगवत कृपा को देखकर मस्त रहे और भगवान को कभी भूले नहीं। अंशी को प्राप्त करने में अंश को कठिनाई और देरी नहीं लगती। कठिनाई और देरी इसलिए लगती है कि अंश ने अपने अंशी से विमुक्ता मानकर उन शरीर आदि को अपना मान रखा है जो अपने नहीं है। अतः भगवान के सन्मुख होते ही उनकी प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। सन्मुख होना जीव का काम है, क्योंकि जीव ही भगवान से विमुख हुआ है। भगवान तो जीव को अपना मानते ही है। जीव भगवान को अपना मान ले, यही सन्मुखता है। मनुष्य से यह बड़ी भारी भूल हो रही है कि जो व्यक्ति वस्तु परिस्थिति अभी नहीं है, अथवा जिसका मिलना निश्चित भी नहीं है और जो मिलने पर भी सदा नहीं रहेगी, उसकी प्राप्ति में वह अपना पूर्ण पुरुषार्थ और उन्नति मानता है। यह मनुष्य अपने साथ बड़ा भारी धोखा कर रहा है। वास्तव में जो नित्य प्राप्त और अपना है, उस परमात्मा को प्राप्त करना ही मनुष्य का परम पुरुषार्थ है और इसी में ही मनुष्य की शूरवीरता है। हम धन संपत्ति आदि सांसारिक पदार्थ कितने ही क्यों न प्राप्त कर ले, पर अंत में या तो वे नहीं रहेंगे अथवा हम नहीं रहेंगे। अंत में नहीं ही शेष रहेगा। वास्तव में जो सदा है उस अविनाशी परमात्मा को प्राप्त कर लेने में ही शूरवीरता है, जो नहीं है उसको प्राप्त करने में कोई शूरवीरता नहीं है। जीव जितना ही नाशवान पदार्थों को महत्व देता है उतना ही वह पतन की तरफ ही जाता है, और जितना ही अविनाशी परमात्मा को महत्व देता है उतना ही वह ऊंचा उठता चला जाता है। कारण कि जीव परमात्मा का ही तो अंश है। नाशवान सांसारिक पदार्थों को प्राप्त करके मनुष्य कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, केवल बड़े होने का बहम या धोखा हो जाता है, और वास्तव में असली बड़प्पन से वंचित हो जाता है। नाशवान पदार्थों के कारण माना गया बड़प्पन कभी टिकता नहीं, और परमात्मा के कारण होने वाला बड़प्पन कभी मिटता नहीं। इसलिए जीव जिसका अंश है उस सर्वोपरि परमात्मा को प्राप्त करने से ही वह बड़ा होता है। इतना बड़ा होता है कि देवता लोग भी उसका आदर करते हैं और कामना करते हैं कि वह हमारे लोक में आए। इतना ही नहीं, स्वयं भगवान भी उसके अधीन हो जाते हैं। मनसस्थानी इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती। भगवान ने जिस प्रकार इसी श्लोक के पूर्वार्ध में जीव को अपने में स्थित न कहकर उसको अपना अंशी बताया है, उसी प्रकार श्लोक के उत्तरार्ध में मन और इंद्रियों को प्रकृति का अंश न कहकर उनको प्रकृति में स्थित बताया है। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान का अंश जीव सदा भगवान में स्थित है, और प्रकृति में स्थित मन तथा इंद्रियां प्रकृति के ही अंश है। मन और इंद्रियों को अपना मानना, उनसे अपना संबंध मानना ही उनको आकर्षित करना है। यहां बुद्धि का अंतर्भाव मन शब्द में और पांच कर्मेंद्रियों का तथा पांच प्राणों का अंतर्भाव इंद्रिय शब्द में मान लेना चाहिए। उपर्युक्त पदों से भगवान कहते हैं कि मेरा अंश जीव मुझ में स्थित रहता हुआ भी भूल से अपनी स्थिति शरीर इंद्रियां मन बुद्धि में मान लेता है। जैसे शरीर इंद्रियां मन बुद्धि प्रकृति का अंश होने से कभी प्रकृति से पृथक नहीं होते, ऐसे ही जीव भी मेरा अंश होने से कभी मुझसे पृथक होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं। परंतु ये जीव मेरे से विमुख होकर मुझे भूल गया। यहां मन और पांच ज्ञानेंद्रियों का नाम लेने का तात्पर्य यह है कि इन छाओं से संबंध जोड़कर ही जीव बनता है। अतः साधक को चाहिए कि वह शरीर इंद्रियां मन बुद्धि को संसार के अर्पण कर दे, अर्थात संसार की सेवा में लगा दे और अपने आप को भगवान के अर्पण कर दे। विशेष बात, मनुष्य भूल से शरीर स्त्री पुत्र धन मकान मान बड़ाई आदि नाशवान वस्तुओं को अपनी और अपने लिए मानकर दुखी होता है। इससे भी नीची बात यह है, इस सामग्री के भोग और संग्रह को लेकर वह अपने को बड़ा मानने लगता है, जबकि वास्तव में इनको अपना मानते ही इनका गुलाम हो जाता है। इस बात का हमें पता लगे या न लगे, हम जिन पदार्थों की आवश्यकता समझते हैं, जिनमें कोई विशेषता या महत्व देखते हैं, या जिनकी हम गरज रखते हैं, वे धन विद्या आदि पदार्थ हमसे बड़े और हम उनसे तुच्छ हो गए। पदार्थों के मिलने में जो अपना महत्व समझता है वह वास्तव में तुच्छ है, चाहे उसे पदार्थ मिले या न मिले। भगवान का दास होने पर भगवान कहते हैं, मैं तो हूँ भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुट मणि। परंतु जिनके हम दास बने हुए हैं वे धन जड़ पदार्थ आदि कभी कहते हैं कि लोभी मेरे मुकुट मणि। वे तो केवल हमें अपना दास ही बनाते हैं। वास्तव में भगवान को अपना जानकर उनके शरण हो जाने से ही मनुष्य बड़ा बनता है, ऊंचा उठता है। इतना ही नहीं, भगवान ऐसे भक्तों को अपने से भी बड़ा मान लेते हैं और कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो य स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जन प्रिय। श्रीमद् भागवत 9वां स्कंद 4था अध्याय 63वां श्लोक। भगवान दुर्वासा से कहते हैं, हे ब्राह्मण, मैं भक्तों के पराधीन हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। भक्तजन मुझे अत्यंत प्यारे लगते हैं, मेरे हृदय पर उनका पूर्ण अधिकार है। कोई भी सांसारिक व्यक्ति पदार्थ क्या हमें इतनी बड़ाई दे सकता है? यह जीव परमात्मा का अंश होते हुए भी प्रकृति के अंश शरीर आदि को अपना मानकर स्वयं अपना अपमान करता है और अपने को नीचे धकेलता है। अगर मनुष्य इन शरीर इंद्रियां मन आदि सांसारिक पदार्थों का दास न बने तो वह भगवान का भी इष्ट हो जाए। इष्टोऽसि मे दृढमिति 18वें अध्याय का 64वां। जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया है उनको भगवान अपना प्रिय कहते हैं। 12वें अध्याय के 13वें से 19वें श्लोकों तक। परंतु जिन्होंने भगवान को प्राप्त नहीं किया है और जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं उन भक्तों को वे अपना अत्यंत प्रिय कहते हैं। भक्तास्ते अतीव मे प्रिया 12वें अध्याय का 20वां श्लोक। ऐसे परम दयालु भगवान को जो साधकों को अत्यंत प्रिय और सिद्ध भक्तों को केवल प्रिय मात्र कहते हैं मनुष्य अपना नहीं समझता, यह उसका कितना प्रमाद है। दूसरी विशेष बात, संसार का छोटा सा अंश शरीर है और परमात्मा का अंश स्वयं जीवात्मा है। भूल यह होती है कि परमात्मा का अंश संसार के साथ मिलकर संसार और परमात्मा दोनों को अपने अनुकूल बनाना चाहता है। साधक का काम है इस भूल को मिटाना। इसके लिए वह शरीर को तो संसार के अनुकूल बना दे और स्वयं परमात्मा के अनुकूल बन जाए। तात्पर्य है कि शरीर को संसार पर छोड़ दे कि जैसी संसार की मर्जी हो वैसे रखे, और अपने को परमात्मा पर छोड़ दे कि जैसे परमात्मा की मर्जी हो वैसे रखे। दूसरी बात यह भी है कि संसार की चीज संसार को दे दे और परमात्मा की चीज परमात्मा को दे दे, यही ईमानदारी है। इस ईमानदारी का नाम ही मुक्ति है। जिसकी चीज है उसको न दे, संसार की चीज भी ले ले और परमात्मा की चीज भी ले ले, वह बेईमानी है। इस बेईमानी का नाम ही बंधन है। संसार की चीज संसार पर और भगवान की चीज भगवान पर छोड़कर निश्चिंत हो जाए, अपनी कोई कामना ही न रखे, न जीने की कामना रखे और न मरने की रखे। भगवान ऐसा कर देते तो ठीक रहता, भगवान वर्षा कर देते तो ठीक रहता, गर्मी ज्यादा पड़ रही है थोड़ी कम कर देते तो अच्छा था, बाढ़ आ गई वर्षा कम करते तो ठीक रहता। इस तरह मनुष्य परमात्मा को भी अपने अनुकूल बनाना चाहता है और संसार को भी। इस बात को छोड़कर अपने आप को सर्वथा भगवान के अर्पित कर दे और भगवान से कह दे कि हे नाथ, आप मुझे पृथ्वी पर रखें, चाहे स्वर्ग में रखें, चाहे नरक में रखें, बालक रखें या जवान रखें अथवा बूढ़ा रखें, अपमानित करके रखें या सम्मानित करके रखें, दुखी बनाकर रखें या सुखी बनाकर रखें, जैसी परिस्थिति में रखना चाहें वैसे रखें, पर मैं आपको भूलूं नहीं। मनुष्य जिस घर को अपना मानता है, जिस कुटुंब को अपना मानता है, जिन रुपयों को अपना मानता है, उनकी चिंता उसको होती है। संसार में लाखों करोड़ों घर हैं, अरबों आदमी हैं, अनगिनत रुपये हैं, पर उनकी चिंता नहीं होती, क्योंकि उनको वह अपना नहीं मानता। जिनको अपना नहीं मानता उनसे तो वो मुक्त है ही, अदर ज्यादा मुक्ति तो हो चुकी, अब थोड़ी सी मुक्ति बाकी है। विचार करना चाहिए कि जिन थोड़ी सी चीजों को हम अपनी मानते हैं वे भी कौन सी साथ रहने वाली है। चीजें तो रहेंगे नहीं, पर ये उनके साथ रहने वाला संबंध है ये रह जाएगा, जो जन्म जन्मांतर तक साथ रहेगा। इसलिए साधक को चाहिए कि वह या तो शरीर को संसार के अर्पण कर दे, जो कर्मयोग है, चाहे अपने को शरीर संसार से सर्वथा अलग कर ले, जो ज्ञान योग है, और चाहे अपने को भगवान के अर्पण कर दे, जो भक्ति योग है। इन तीनों में से कोई भी साधन अपना ले, तीनों का फल एक ही होगा। परिशिष्ट भाव, यहां भगवान ने जिसको अपना अंश कहा है उसी को सातवें अध्याय के पांचवें श्लोक में भगवान ने अपनी परा प्रकृति के नाम से कहा है। इसलिए दोनों ही जगह जीव भूत ये शब्द आया हुआ है। जीव भूत है, जीव भूताम, परा और अपरा दोनों भगवान की शक्तियां हैं। सात का चौथा पांचवा, जब से परा की दृष्टि भगवान से हटकर अपरा की तरफ चली गई तब से परा जन्म मरण के चक्कर में पड़ गई। इसी बात को सातवें अध्याय में कहा, ययेदम धार्यते जगत, और यहां कहा मनस स्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती। यद्यपि अपरा भी भगवान की है तथापि उसका स्वभाव अलग है क्योंकि वो परिवर्तनशील है। इसलिए भगवान ने अपने को अपरा से अतीत बताया है, यस्मात् क्षरम अतीतो हम, 15 का 18वां। परंतु परा और भगवान एक स्वभाव वाले अपरिवर्तनशील है, इसलिए ममैवांशः पद में एव कहने का तात्पर्य है कि जीव केवल मेरा ही अंश है, इसमें प्रकृति का अंश किंचन मात्र भी नहीं है। जैसे शरीर में माता और पिता दोनों के अंश का मिश्रण होता है, ऐसे जीव में मेरा और प्रकृति के अंश का मिश्रण नहीं है, प्रत्युत वह केवल मेरा अंश है। अतः इसका संबंध केवल मेरे साथ है, प्रकृति के साथ बिल्कुल नहीं है। प्रकृति के साथ संबंध तो वह खुद जोड़ता है, मनस स्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सकती। अपरा प्रकृति भगवान की है पर जीव ने उसको अपना मान लिया और उससे सुख लेने लग गया, तभी वह बंधन में पड़ा है। अपनी न होने के कारण ही न वस्तुएं ठहरती है और न सुख ठहरता है। स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ अपना संबंध मानना ही अनर्थ का कारण है। जीव शरीर को अपनी तरफ खींचता है, कर्षति तात्पर्य है कि वो अपना मानता है, पर जो वास्तव में अपना है उस परमात्मा को अपना मानता नहीं। यह जीव की मूल भूल है। जीव ब्रह्म का अंश नहीं है, प्रत्युत सगुण ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसका कारण यह है कि ब्रह्म चिन्मय सत्ता मात्र है, उसमें अंश अंशांशी भाव हो सकता ही नहीं। जीव की ब्रह्म में एकता है, साधर्म्य है, अर्थात अनेक रूप से जो जीव है वही सब एक रूप से ब्रह्म है। शरीर के साथ संबंध होने से यह जीव है और शरीर के साथ संबंध न होने से वो ब्रह्म है। अतः वास्तव में जीव और ब्रह्म दोनों ही समग्र परमात्मा के अंश हैं। इसलिए भगवान ने अपने को ब्रह्म की प्रतिष्ठा बताया है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अमृतस्याव्ययस्य च, 14 का 27। और ब्रह्म को अपने ही समग्र रूप का एक अंग बताया है, ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम अध्यात्मं कर्म चाखिलम, 7 का 29-30। मन और इंद्रिया जिसके अंश है उसी में रहते हैं, प्रकृति स्थानी। इससे जीव को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि मैं भी जिसका अंश हूँ उसी में निरंतर रहना चाहिए, उसी के साथ संबंध जोड़ना चाहिए। यह संबंध स्वयं को ही जोड़ना पड़ेगा, दूसरा नहीं जोड़ेगा। कारण कि स्वयं ने जगत से संबंध जोड़ा है और स्वयं ही परमात्मा से विमुख हुआ है। जगत के सन्मुख होने में जगत कारण नहीं है और परमात्मा से विमुख होने में परमात्मा कारण नहीं है, बल्कि दोनों में स्वयं ही कारण है। परमात्मा का अंश होने से जीव स्वतंत्र है और इसी स्वतंत्रता का उसने दुरुपयोग किया है, इसलिए इसका सदुपयोग स्वयं को ही करना पड़ेगा। उद्धरेद आत्मना आत्मानम 6:5। प्रकृति के साथ मन और इंद्रियों का नित्य और वास्तविक संबंध है, पर मन और इंद्रियों के साथ स्वयं का अनित्य और मानववा संबंध है। अनित्य संबंध कभी स्थायी नहीं रहता, बल्कि बदलता और मिटता रहता है। स्वयं का नित्य संबंध परमात्मा के साथ है, जो कभी बदलता और मिटता नहीं, परंतु अनित्य संबंध को स्वीकार कर लेने से उस नित्य संबंध से विमुक्ता हो जाती है, जिससे उसका अनुभव नहीं होता। ममैवांशो जीवलोके पदों से यह भाव निकलता है कि हम तो प्रभु को अपना मानते हैं, पर प्रभु हमें अपना जानते हैं। जब जीव भगवान के शरण हो जाता है, तब वह भी प्रभु को अपना जान लेता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्तिते 7:14। जीव भगवान का सनातन अंश है, अतः भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ना अर्थात उनको अपना मानना ही इसका वास्तविक पुरुषार्थ है। शरीर से होने वाले पुरुषार्थ में तो क्रिया मुख्य है, जो केवल संसार के लिए ही होती है, क्योंकि शरीर संसार का अंश है। परंतु स्वयं से होने वाले पुरुषार्थ में भाव मुख्य है, इसलिए बुराई रहित होना, असंग होना, भगवान को अपना मानना, ये स्वयं के पुरुषार्थ है। बुराई रहित होने से मनुष्य संसार के लिए उपयोगी हो जाता है, शरीर संसार से असंग होने से वह अपने लिए उपयोगी हो जाता है, भगवान को अपना मानने से भगवान के लिए उपयोगी हो जाता है। बुराई रहित हुए बिना मनुष्य संसार के लिए उपयोगी नहीं हो सकता, शरीर से असंग हुए बिना मनुष्य अपने लिए उपयोगी नहीं हो सकता, भगवान के साथ अपनेपन का संबंध जोड़े बिना मनुष्य भगवान के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। मैं बुराई रहित हो जाऊं, मैं असंग हो जाऊं, मैं भगवत प्रेमी हो जाऊं, ऐसी आवश्यकता का अनुभव करना भी पुरुषार्थ है। परंतु सबसे पहले साधक को ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं बुराई रहित हो सकता हूं, असंग हो सकता हूं, प्रेमी हो सकता हूं। इसके लिए साधक को ये जानना चाहिए कि संसार के नाते हम सब एक हैं, आत्मा के नाते हम सब एक हैं और परमात्मा के नाते भी हम सब एक हैं। इसलिए जैसे अपने शरीर के हित का भाव रहता है, ऐसे ही संपूर्ण शरीरों के हित का भाव रहना चाहिए। और जैसे संपूर्ण शरीरों से हम निर्लिप्त रहते हैं, ऐसे ही इस शरीर से भी निर्लिप्त रहना चाहिए। संपूर्ण शरीरों के साथ अपने शरीर की एकता मानकर हम बुराई रहित हो सकते हैं। अपने शरीर सहित संपूर्ण शरीरों को छोड़कर हम असंग हो सकते हैं। संपूर्ण शरीर संसार को छोड़कर हम भगवत प्रेमी हो सकते हैं। हमारा संबंध भगवान के साथ है, ममैवांशो जीवलोके, इसलिए हम परमात्मा में ही स्थित है। परंतु शरीर इंद्रियां मन बुद्धि का संबंध अपरा प्रकृति के साथ है, इसलिए वे प्रकृति में स्थित हैं। प्रकृति स्थानी विकारांश गुणांश विद्धि प्रकृति संभवान 13:19। शरीर के साथ हमारा मिलन कभी हुआ ही नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। इसी प्रकार परमात्मा से अलग हम कभी हुए ही नहीं, है ही नहीं, होंगे ही नहीं और हो सकते भी नहीं। हमसे दूर से दूर कोई चीज है तो वो शरीर ही है, और नजदीक से नजदीक कोई चीज है तो वो परमात्मा ही है। परंतु कामना ममता तादात्म्य के कारण मनुष्य को उल्टा दिखने लग गया, शरीर तो नजदीक दिखने लग गया और परमात्मा दूर दिखने लग गए। शरीर तो प्राप्त दिखता है और परमात्मा अप्राप्त दिखते। शरीर से माने हुए संबंध का त्याग करने के लिए साधक को तीन बातें मान लेनी चाहिए। पहली बात, शरीर मेरा नहीं है। दूसरा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और तीसरा, मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है। जब तक साधक स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से अपना संबंध मानता है, तब तक स्थूल शरीर से होने वाला कर्म, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता, यहां तक कि निर्विकल्प अवस्था, तीनों ही उसको बांधने वाले होते हैं। परंतु तीनों शरीरों से संबंध विच्छेद होने पर वह कर्म, चिंतन और स्थिरता तीनों से बंधता नहीं, अर्थात तीनों से असंग हो जाता है। भगवान के नित्य संबंध की जागृति के लिए साधक को तीन बातें मान लेनी चाहिए। पहला, प्रभु मेरे हैं। दूसरा, मैं प्रभु का हूं। और तीसरा, सब कुछ प्रभु का है। भगवान से नित्य संबंध की जागृति होने पर साधक को भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। भगवत प्रेम की प्राप्ति में मनुष्य जीवन की पूर्णता है। मनुष्य में तीन इच्छाएं होती हैं, भोग की इच्छा, तत्व की इच्छा और प्रेम की इच्छा। भोग की इच्छा कामना है, तत्व की इच्छा जिज्ञासा है और प्रेम की इच्छा पिपासा है। भोग की कामना शरीर को लेकर होती है, तत्व की जिज्ञासा स्वरूप को लेकर होती है और प्रेम की पिपासा भगवान को लेकर होती है। शरीर को अपना मानना भूल है, क्योंकि शरीर प्रकृति का अंश है। अतः शरीर को लेकर होने वाली भोग की इच्छा प्राकृत है, असत है, इसलिए अपनी नहीं है, केवल भूल से मान रखी है। परंतु तत्व की और प्रेम की इच्छा अपनी है, इसमें किसी प्रकार की भूल नहीं है, इसलिए शरीर को निष्काम भाव पूर्वक परिवार की, समाज की और संसार की सेवा में लगाने से अथवा तत्व की जिज्ञासा तेज होने से भूल मिट जाती है। भूल मिटने से भोग की इच्छा मिट जाती है। भोग की इच्छा मिटने से तत्व की जिज्ञासा पूर्ण हो जाती है और साधक को स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है, अर्थात उसको तत्व का ज्ञान हो जाता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। फिर स्वरूप जिसका अंश है, उस परमात्मा के प्रेम की जिज्ञासा जागृत होती है। जीव मात्र परमात्मा के अंश हैं, इसलिए मात्र जीवों की अंतिम इच्छा प्रेम की ही है। प्रेम की इच्छा सार्वभौम इच्छा है। प्रेम की प्राप्ति होने पर मनुष्य जन्म पूर्ण हो जाता है, फिर कुछ भी बाकी नहीं रहता।